वनवासी गौरव बिरसा मुंडा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत भूमि पर कई ऐसे कई नायक पैदा हुए जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्णाक्षरों से लिखवाया। बिरसा मुंडा माँ भारती के एक ऐसे ही वनवासी सपूत थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वनवासी समाज की दिशा व दशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। उन्होंने न केवल वनवासियों के अधिकारों के लिए जंगल व जमीन की निर्णायक लड़ाई लड़ी बल्कि आजादी की लड़ाई में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे महान धर्मनायक भी थे और प्रभावी समाज सुधारक भी। झारखंड के एक वनवासी परिवार में 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा को झारखंड ही नहीं वरन बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के वनवासी बहुल क्षेत्रों में भगवान की तरह पूजा जाता है। आज इस अप्रतिम वनवासी के महानायक की 147वीं जयंती है जिनकी स्मृति में पूर्व प्रधानमंत्री स्व अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2000 में झारखंड को बिहार से अलग कर पृथक राज्य घोषित किया था और गत वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती पर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। गौरतलब हो कि अंग्रेजों की घुसपैठ से पहले देश की वन्य संपदा पर जल जंगल और जमीन के सहारे खुली हवा में जीवन जीने वाले आदिवासियों का राज था, लेकिन अंग्रेजी शासन में आदिवासियों की स्वतंत्रता स्वायत्ता और सुरक्षा पर ग्रहण लग गया। अंग्रेजों ने जब आदिवासियों से उनके जल जंगल जमीन को छीनने की कोशिश की तो वनवासी भाषा में उलगोलान यानी आंदोलन हुआ। बिरसा से पहले हुए वनवासी विद्रोह जमीन बचाने के लिए हुए थे, लेकिन बिरसा का उलगोलान आंदोलन तीन लक्ष्यों पर केंद्रित था। पहला जल जंगल व जमीन की रक्षा, दूसरा नारी की सुरक्षा व सम्मान और तीसरा भारतीय धर्म व संस्कृति की पुनर्प्रतिष्ठा। खेद का विषय है कि मात्र 25 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में वनवासी समाज के हितों के सबसे बड़े पैरोकार के रूप में राष्ट्रीय फलक पर एक चमकते हुए सितारे के रूप में उभरे बिरसा के योगदान को आजाद भारत की कांग्रेस सरकार व वामपंथी इतिहासकारों ने वह महत्व नहीं दिया जिसके वे वास्तविक अधिकारी थे। वर्ष 1875 में रांची जिले के उलिहतु गांव में 15 नवंबर को सुगना मुंडा और कर्मी हटू के पुत्र के रूप में जन्मे बिरसा मुंडा बचपन से ही अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि के बालक थे। बृहस्पतिवार को जन्म होने के कारण माँ बाप ने बिरसा नाम दिया। यह वह दौर था जब अपनी विस्तारवादी नीतियों के चलते ब्रिटिश हुकूमत भारत में अपनी जड़ें जमा रही थी और ईसाई मिशनरियां भारत में लोभ लालच व प्रलोभन के बल पर बड़े पैमाने पर धर्मांतरण के सुनियोजित षड्यंत्र में पुरजोर तरीके से जुटी हुई थी। इन मिशनरियों के झांसे में आकर बड़े पैमाने पर आदिवासियों के साथ बिरसा के परिवार के चाचा ताऊ आदि कई लोग ईसाई धर्म अपना चुके थे। उधर जब गांव की प्राथमिक पाठशाला के शिक्षक ने बिरसा की बौद्धिक प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके पिता को उन्हें चाईबासा के जर्मन मिशन मिडिल स्कूल में पढ़ाने की सलाह दी तो वे पुत्र के बेहतर भविष्य के लिए चाईबासा चले आए। चूंकि उस मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए ईसाई धर्म स्वीकार करना अनिवार्य था, अतः बिरसा व उनके पिता को ईसाई धर्म अपनाने को बाध्य होना पड़ा। बिरसा में पिता सुगना जर्मन धर्म प्रचारकों के सहयोगी भी बन गए। धर्मांतरण के बाद बिरसा का नाम डेविड रख दिया गया। उस जर्मन मिशन स्कूल में 1886 से 1890 तक 4 साल तक पढ़ाई के दौरान ईसाई धर्म व ईसाई मिशनरिया की मंशा व षड्यंत्रों को मेधावी बिरसा ने बेहद करीब से देखा और समझा। स्कूल में ईसाई शिक्षकों व पादरी द्वारा वनवासी संस्कृति का उपहास होते देख एक दिन अचानक बिरसा के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने भी पादरियों का अपमान कर दिया, फलतः स्कूल से निकाल दिया गया। संयोगवश उसी दौरान उनकी भेंट बंदगांव के एक हिंदू वैष्णव संत स्वामी आनंद पांडा से हुई। उनके व्यक्तित्व व उपदेशों का बिरसा के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और जर्मन मिशन की सदस्यता त्याग कर बिरसा ने एक साल तक वर्ष 1891 उनके सानिध्य में रहकर रामायण महाभारत हितोपदेश गीता आदि हिंदू धर्मग्रंथों का अध्ययन मनन व अनुशीलन किया और वे मांसाहार त्याग यज्ञोपवीत धारण कर हिंदू धर्म में दीक्षित हो गए। इसके बाद भारतीय दर्शन और संस्कृति के रहस्यों को जानने की गहरी रुचि के चलते बिरसा सत्य की खोज के लिए महात्मा बुद्ध की तरह एकांत स्थान पर कठोर साधना में जुट गए। लगभग 4 साल एकांतवास के बाद वर्ष 1894 जब बिरसा अपनों के बीच पुनः प्रकट हुए तो एक हिंदू महात्मा की तरह पीला वस्त्र लकड़ी की खदाऊं और यज्ञोपवीत धारण किए हुए। उसी दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में सूखे के कारण भयंकर अकाल और महामारी फैल गई थी। उस आपातकाल में बिरसा ने पूरे मनोयोग से पीड़ितों की सेवा की। कहते हैं कि 1895 में छोटा नागपुर क्षेत्र में कुछ ऐसी अलौकिक घटनाएं घटी जिनके कारण लोग बिरसा को भगवान का अवतार मानने लगे और उनमें यह विश्वास दृढ़ हो गया कि बिरसा के स्पर्श मात्र से ही रोग दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे एक महात्मा और सुधारक के रूप में बिरसा मुंडा की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उन्होंने गौ हत्या का विरोध किया और अपने शिष्यों को नित्य तुलसी की पूजा करने की प्रेरणा दी। लोग उनकी बातें सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र होने लगे। अब तक बिरसा को बोध हो चुका था कि अंधविश्वासों के मकरजाल में फंसा वनवासी समाज आस्था के मामले में पूरी तरह भटका हुआ है। इसीलिए कभी मिशनरियों के प्रलोभन में आ जाता है और कभी कभी धकोसलों को ही ईश्वर मान लेता है। उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले वनवासी बंधुओं को समझाया कि ईसाई धर्म अपनाने से हम अपने पूर्वजों की श्रेष्ठ धर्म परंपराओं से विमुख होते जा रहे हैं। उन्होंने उनको हिंसा, मांसाहार एवं मादक पदार्थों से दूर रहने के लाभ बताए। नतीजतन उनके विचारों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में वनवासी अपने मूल धर्म में वापस लौट उनके अनुयायी बन गए। तदुपरांत बिरसा ने वनवासी समाज को ब्रिटिश शासकों व उनके चाटुकार जमींदारों जागीरदारों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए तीन स्तरों पर संगठित किया। पहला सामाजिक स्तर पर, ताकि वे अंधविश्वासों और धकोसलों के चंगुल से छूट सकें। इसके लिए उन्होंने उनको स्वच्छता का संस्कार सिखाया, शिक्षा का महत्व बताया तथा आपसी सहयोग व सहकार की अहमियत समझाए। दूसरे आर्थिक स्तर पर सुधार के तहत वनवासी समाज को जमींदारों और जागीरदारों के आर्थिक शोषण से मुक्त करने के लिए बिरसा ने बेगारी प्रथा के विरुद्ध जबरदस्त आंदोलन किया। परिणामस्वरूप जमींदारों और जागीरदारों के घरों तथा खेतों और वन की भूमि पर कार्य रुक गया। अपने मूल पैतृक अधिकारों को बहाल करने की मांग के साथ वनवासियों ने जब बिरसा के नेतृत्व में अदालत में याचिका दायर की तो शासक वर्ग बुरी तरह घबरा गया, चूंकि सामाजिक और आर्थिक स्तर पर आदिवासियों में चेतना की चिंगारी सुलग गई थी। अतः राजनीतिक स्तर पर इसे आग बनने में देर नहीं लगी। झारखंड जिला गैजेटियर के अभिलेख बताते हैं कि बिरसा के तेजी से बढ़ते प्रभाव और लोकप्रियता को देखकर अंग्रेज प्रशासन, जमींदार, जागीरदार और मिशनरी सभी बुरी तरह चिंतित हो उठे थे। अतः सुनियोजित संघर्ष के तहत रांची के अंग्रेज कप्तान मेयर्स ने 24 अगस्त 1895 को बिरसा मुंडा को रात में सोते समय बेहोशी की दवा का रुमाल मुंह में ठूस रातों रात उन्हें उठवाकर उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 2 वर्ष के सश्रम कारावास के तहत हजारीबाग के केंद्रीय कारागार में डाल दिया गया। इस घटना से बिरसा के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा और बढ़ गई और उन्होंने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। जेल से छूटकर बिरसा अपनी लक्ष्य सिद्धि में प्राणपण से जुट गए। गुप्त सभाएं कर बिरसा ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए हजारों वनवासियों को पुनः संगठित कर उनको शस्त्र संग्रह करने, तीर कमान बनाने और कुल्हाड़ी की धार तेज करने के निर्देश देकर अन्याय के विरुद्ध महायुद्ध का शंखनाद कर दिया। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खोटी थाने पर धावा बोल अंग्रेज सिपाहियों के छक्के छुड़ा दिए। वे अभी संभले भी नहीं थे कि 1898 में तांगा नदी के किनारे वनवासियों से भिड़ंत में अंग्रेज सेना पुनः हार गई। इन हमलों से घबराकर अंग्रेजों ने हजारीबाग और कलकत्ता से बड़ी सेना बुलवानी पड़ी। 24 दिसंबर 1899 को हुई लड़ाई में, जिसमें एक ओर अंग्रेजों के पास बंदूक, बम आदि आधुनिक हथियार थे, जबकि दूसरी ओर वनवासी क्रांतिकारियों के पास तीर कमान आदि हथियार, बिरसा और उनके अनुयायियों ने जान की बाजी लगाकर युद्ध लड़ा, जिसमें बिरसा के लगभग 400 साथी मारे गए। इसके बाद जनवरी 1900 में डोम्बाड़ी पहाड़ी पर जब बिरसा एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, अंग्रेजी सेना ने अचानक धावा बोल दिया। उस हमले में बहुत सी स्त्रियां और बच्चे भी मारे गए थे और बिरसा के कई अनुयायियों की गिरफ्तारी भी हुई। अंततः 500 रुपये के सरकारी इनाम के लालच में जीराकेल गांवों के कुछ विश्वासघातियों के कारण बिरसा 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तारी कर लिए गए। जंजीरों में जकड़कर उन्हें रांची जेल में डाल दिया गया। वहां लंबे समय तक हंसते हंसते कठोर यातनाएं सहते हुए यह महान वीर रणवाकुरा 9 जून 1900 को सदा सदा के लिए इस संसार से विदा हो गया। जानकारों की माने तो जेल के भोजन में संभवतः उन्हें मीठा जहर दिया गया था, जबकि प्रचारित यह किया गया कि उनकी मृत्यु हैजा हो जाने से हुई। धर्मांतरण, शोषण और अन्याय के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति का संचालन करने वाले ऐसे महान राष्ट्रनायक को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि।